नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में स्थानीय उत्पादन के जरिए देश की 70% तक आईटी हार्डवेयर आवश्यकता को पूरा करना और गैर भरोसेमंद स्रोतों से आयात पर निर्भरता कम करना है। चंद्रशेखर ने पत्रकारों से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिन में उद्योग जगत के लोगों के साथ आईटी हार्डवेयर आयात नियमों का एक मसौदा साझा करेगा। मकसद गैर भरोसेमंद स्रोतों से आपूर्ति पर निर्भरता को कम करना है। मंत्री ने कहा, वर्तमान में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हमारी करीब 80% आपूर्ति आवश्यकता आयात से पूरी होती है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो भी स्रोत हैं उन पर भरोसा किया जाए। विश्वास बढ़ाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय घटक बढ़ाना जरूरी होगा। आज हमारी आपूर्ति आवश्यकता 8 से 10% भारत से आता है। हम अगले 3 वर्षों में इसे 65 से 70% करना चाहते हैं। सरकार ने शुक्रवार को आईटी हार्डवेयर कंपनियों से कहा कि लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर आदि के लिए आयात मंजूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। सरकार ने कंपनियों से मोबाइल, आईटी और दूरसंचार उत्पादों के आयात का पिछले 3 साल का आंकड़ा भी मांगा है। एक सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा, संबंधित कंपनियों को बता दिया गया है कि आयात प्रबंधन प्रणाली पोर्टल इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। इसका प्रबंधन विदेश व्यापार महानिदेशालय करेगा। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनियों को सूचित कर दिया है कि आयात प्रबंधन प्रणाली सितंबर के अंत तक शुरू हो जाएगा। इसका प्रबंधन DGFT करेगा। इसने आयातकों से अपने संगठन का आंकड़ा उपलब्ध कराने और बाद में पिछले 3 साल का आंकड़ा देने के लिए कहा है। सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि उसने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत 13 ई नीलामी में थोक ग्राहकों को केंद्रीय पूल से 18.09 लाख टन गेहूं बेचा है। इससे गेहूं तथा गेहूं के आटे की कीमतों को कम करने में मदद मिली है। सरकार ने 9 अगस्त को घोषणा की थी कि वह थोक ग्राहक को OMSS के तहत अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल बेचेगी। साप्ताहिक ई नीलामी के जरिए गेहूं 125 प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर बेचा जा रहा है, जो मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर है। खाद्य मंत्रालय के बयान के अनुसार OMSS नीति के सफल कार्यान्वयन ने ये सुनिश्चित किया कि खुले बाजार में गेहूं की कीमतें काबू में रहें। साथ ही 2023-24 की शेष अवधि के लिए OMSS नीति को जारी रखने के लिए केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त भंडार है। आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े ऑनलाइन मंच ओयो ने जनवरी जुलाई 2023 में कॉरपोरेट जगत से जुड़े 2800 ग्राहक जोड़े, जो सालाना आधार पर 11.75% अधिक है। एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। कंपनी ने शुक्रवार को ओयो बिजनेस ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2023 शीर्षक वाली अपनी एक रिपोर्ट जारी की। उनके अनुसार जनवरी जुलाई 2023 में व्यावसायिक यात्रा में सालाना आधार पर 20% राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया, ओयो ने सालाना आधार पर करीब 12% वृद्धि दर्ज करते हुए कॉरपोरेट जगत से जुड़े 2471 नए ग्राहक जोड़े। रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद में 660 सबसे कॉरपोरेट ग्राहक जुड़े। इसके बाद गुरुग्राम में 593, दिल्ली में 343, बेंगलुरु में 315, मुंबई में 282, कोलकाता में 268 और पुणे में 218 ग्राहक जुड़े। रिपोर्ट में कहा गया कि नोएडा, लखनऊ, कोची, जयपुर, चेन्नई और कोयम्बटूर जैसे कई अन्य व्यावसायिक केंद्रों ने वृद्धि में योगदान दिया है। पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु के बाद हैदराबाद ने राजस्व वृद्धि में सबसे अधिक योगदान दिया है। भारतीय स्टार्टअप रॉडजेन अमेरिकी शेयर बाजार नेस्डेक पर सूचीबद्ध किया गया। रॉडजेन AI द्वारा संचालित एक प्रमुख वैश्विक वाहन बीमा प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में उभरा है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को नेस्डेक पर कारोबार शुरू किया। इसके सामान्य शेयर नेस्डेक ग्लोबल मार्केट में RDJ&N नाम के तहत अपने शेयर वारंट नेस्डेक कैपिटल मार्केट में RDZNW नाम के तहत कारोबार कर रहे थे। कंपनी 22 सितंबर 2023 को न्यूयॉर्क शहर के नेस्डेक में दिन का कारोबार खत्म होने रूप में घंटी बजाएगी। रॉडजेन के CEO रोहन मल्होत्रा के हवाले एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, हम 800 अरब अमेरिकी डॉलर के वाहन बीमा बाजार को नया आकार देने में AI की परिवर्तनकारी क्षमता के इस्तेमाल को लेकर उत्साहित हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को भरोसा जताया कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मॉनसून की कमी के जोखिमों के बावजूद देश चालू वित्त वर्ष में 6.5% की वृद्धि दर हासिल करेगा। इसका प्रमुख कारण कंपनियों की लाभ प्रदाता, निजी पूंजी निर्माण और बैंक ऋण वृद्धि का बेहतर होना है। वित्त मंत्रालय की अगस्त महीने की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि अप्रैल जून तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर के पीछे मजबूत घरेलू मांग, खपत और निवेश मुख्य वजह थी। GST संग्रह, बिजली खपत, माल ढुलाई आदि जैसे विभिन्न उच्च आवर्ती संकेतकों में भी वृद्धि दर्ज की गई। मासिक समीक्षा में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, अगस्त में मॉनसून की कमी का खरीफ एवं रबी फसलों पर असर जैसे कुछ जोखिमों का भी उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक इन जोखिमों का आकलन करने की जरूरत है। हालांकि सितंबर में हुई बारिश ने अगस्त में बारिश की कमी की काफी हद तक भरपाई की है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।